ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में आज के मुख्य समाचार। अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी के संबंध में सरकार के निर्णय और क्रियान्वयन के संबंध में सदन को जानकारी कराने का सभामुख सापकोटा ने सरकार को किया निर्देश। वैदेशिक रोजगारी वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की सरकार कर रही है तैयारी। नेपाल में आज कोरोना के 435 नए मामले आए सामने और भारत के 15वें राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू की जीत हुई सुनिश्चित। अब समाचार विस्तार से। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा ने अमेरिकी सेना से स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के संबंध में सरकार के निर्णय और इसके क्रियान्वयन के संबंध में सदन को जानकारी कराने का सरकार को निर्देश किया। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में अधिकांश सांसदों ने ये सवाल उठाया कि एसपीपी के संबंध में सहभागी न होने का निर्णय करने के बावजूद अमेरिका को पत्र क्यों नहीं भेजा गया। इस पर सभामुख सापकोटा ने इस बारे में स्पष्ट करने के लिए सरकार को रूलिंग की। बैठक में आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट बनाते समय अनधिकृत व्यक्ति की संलग्नता के मामले में जांच के लिए गठित संसदीय छानबीन विशेष समिति की समयावधि 7 दिन बढ़ाने का सर्वसम्मत निर्णय किया। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों ने खेती के समय में मल अभाव लगायत हालिया समस्याओं पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट्स एंड प्रोफेशनल के प्रतिनिधियों ने भेंटवार्ता की। भेंट में प्रधानमंत्री देउबा ने नेपाल को निवेश के लिए उदीयमान गंतव्य बताते हुए प्रतिनिधिमंडल से नेपाल की समृद्धि की यात्रा में साझेदार बनने का आग्रह किया। ये बताते हुए कि नेपाल में पीपीपी अंतर्गत स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा, दीर्घकालीन एवं उत्थानशील पर्यटन के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्रों में निवेश की संभाव्यता है। प्रधानमंत्री देउबा ने कहा कि सरकार पीपीपी परियोजना को निवेश संभाव्य बनाने में की विज्ञता का लाभ उठाना चाहती है। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शेर बहादुर कुंवर ने कहा कि वैदेशिक रोजगार वाले नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जाएगा। गैर आवासीय नेपाली संघ द्वारा आज काठमांडू में आयोजित वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, निवेश तथा वैदेशिक मुद्रा निक्षेप कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री कुंवर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि वैदेशिक रोजगार में रहे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा में आबद्ध करने के लिए नई व्यवस्था की जाएगी। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन कुमार थापा ने कहा कि आसन्न संघीय और प्रादेशिक चुनाव में निश्चित उद्देश्य के साथ दलों के बीच तालमेल होना चाहिए। आज नेपाल प्रेस यूनियन चितवन द्वारा बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में महामंत्री थापा ने कहा कि तालमेल का उद्देश्य पहले ही स्पष्ट हो जाना चाहिए। महामंत्री थापा ने आगे कहा कि चुनावी तालमेल के लिए दलों के बीच संविधान के प्रति दृष्टिकोण, आर्थिक सामाजिक मुद्दों और विदेश नीति के संदर्भ में न्यूनतम समझदारी होनी चाहिए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेंद्र पौड़ेल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में तालाबंदी करने का कार्य कभी स्वीकार्य नहीं होगा। आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विश्वविद्यालयों की समस्या का समाधान वार्ता के माध्यम से करने और नियमित पठन पाठन में अवरोध न करने का विद्यार्थियों और प्राध्यापकों से आग्रह किया। पूर्व अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा ने कहा कि संसदीय समिति में पूछे गए अधिकांश सवालों का स्पष्ट जवाब दे चुके हैं। प्रतिनिधि सभा द्वारा गठित संसदीय छानबीन विशेष समिति ने चालू आर्थिक वर्ष के बजट बनाने के दौरान अनधिकृत व्यक्ति को शामिल कराने के विषय में आज उनसे पूछताछ की थी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर, राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजी।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हाँ, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव ने नेपाल के लिए भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने शिष्टाचार मुलाकात की। आज मंत्रालय में उनके बीच हुई मुलाकात में सरकारी तरीके से रासायनिक मल की आपूर्ति, नस्ल सुधार के लिए भारत से मुर्रा जात की भैंस आयात करने, गन्ना और कॉफी के लिए नए प्रजाति का आयात, मानव संसाधन विकास के लिए अध्ययन करने लगाये विविध विषयों में विचार विमर्श हुआ। ये जानकारी मंत्रालय के सह सचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश कुमार संजेल ने दी। आज देशभर में कोरोना के 435 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 56 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। बहरहाल सक्रिय संक्रमितों की संख्या 2537 है। वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 28 बघी में आज बिजली के गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बारिश होने के बाद रोपाई के लिए खेत में मेड़ बनाने के दौरान अचानक बिजली के गिरने से खेत में काम कर रहे स्थानीय 32 वर्षीय दीनानाथ ठाकुर की मौत हो गई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। वे इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। तीसरे राउंड की गिनती में ही उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 50% वोट पा लिए हैं। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हरा दिया है। अभी एक राउंड वोटों की गिनती बची है, लेकिन यह सिर्फ औपचारिकता मात्र है। कुल तीनों राउंड की बात करें तो कुल वोट 3219 थे। इनकी वैल्यू 8,38,839 थी। इसमें से द्रौपदी मुर्मू को 2161 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 5,77,777 है। वहीं यशवंत सिन्हा को 1,058 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 2,61,062 मिले। रूस ने आज यूरोप में एक प्रमुख पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति को फिर से शुरू कर दिया है। पाइपलाइन ऑपरेटर ने कहा कि पश्चिमी प्रतिबंधों के खिलाफ रूस अपने विशाल ऊर्जा निर्यात का इस्तेमाल करेगा। इससे पहले पाइपलाइन ऑपरेटर के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया था कि 10 दिनों के खबड़खाब के बाद नॉर्ड स्ट्रीम एक पाइपलाइन को फिर से शुरू करने में कई घंटों का समय लग सकता है। पाइपलाइन इस समय में फिर से शुरू हुई है जब रूस के विदेश मंत्री ने लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन में रूस की सेना का लक्ष्य अब उसके पूर्वी हिस्से यानी डोनबास से आगे निकल गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी के संबंध में सरकार के निर्णय और क्रियान्वयन के संबंध में सदन को जानकारी कराने का सभामुख सापकोटा ने सरकार को किया निर्देश। वैदेशिक रोजगारी वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की सरकार कर रही है तैयारी। नेपाल में आज कोरोना के 435 नए मामले आए सामने और भारत के 15वें राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू की जीत हुई सुनिश्चित। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।